नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अदीस अबाबा में इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर अबी अहमद अली के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों ने आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री की 2 दिन की जॉर्डन की सफल यात्रा संपन्न। दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने यरूशलेम में इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति दोहराई। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे और विकासशील देशों के लिए सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। रूस के साथ युद्ध के कारण यूक्रेन को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 35 देशों ने एक मुआवजा निकाय के गठन को मंजूरी दी। और दुबई में भारत अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट में मलेशिया को 315 रन से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर अबी अहमद अली के बीच आज अदीस अबाबा में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता हुई। दोनों देशों ने 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इनमें सीमा शुल्क कार्य में प्रशासनिक सहायता, इथियोपिया की दूतावास में डेटा सेंटर की स्थापना और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में सहयोग शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 2 दिन की यात्रा पर इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा पहुंचे। इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर अबी अहमद अली ने अदीस अबाबा हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं ने पारंपरिक कॉफी समारोह में भी हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति निवास नेशनल पैलेस में औपचारिक स्वागत और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये यात्रा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने की दोनों देशों की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है।
आज शाम इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। बच्चों, महिलाओं और इथियोपियाई लोगों सहित सैकड़ों भारतीय प्रवासी प्रतिनिधि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए मौजूद थे। अदीस अबाबा भारतीय संघ का मुख्यालय भी है। 2023 में भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। भारतीय पक्ष और इथियोपियाई नेतृत्व के बीच होने वाली चर्चाओं के एजेंडे में कृषि, खनन, डिजिटल सहयोग, सौर गठबंधन और साइबर सुरक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, अदीस अबाबा, इथियोपिया।
इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की 2 दिन की जॉर्डन यात्रा संपन्न हो गई है। उन्होंने जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला द्वितीय इबन अल हुसैन से व्यापक बातचीत की और दोनों देशों के उद्योग जगत प्रमुखों के व्यापार मंच को संबोधित किया। एक रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान भारत और जॉर्डन व्यापार, प्रौद्योगिकी, संपर्क और लोगों के बीच संबंध में अपनी साझेदारी को गहरा करने के लिए दूरदर्शी प्रारूप पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री मोदी जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला द्वितीय के निमंत्रण पर वहां गए। ये यात्रा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हुई। आर्थिक मोर्चे पर दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार में लगातार वृद्धि का स्वागत किया, जो 2024 में $2.30 अरब था। उन्होंने जॉर्डन भारत कारोबारी मंच का स्वागत किया और 2026 में अगली व्यापार तथा आर्थिक संयुक्त समिति बुलाने पर सहमति व्यक्त की। भारत और जॉर्डन के बीच संस्कृति, नवीकरणीय ऊर्जा, जल प्रबंधन, डिजिटल बुनियादी ढांचा तथा जॉर्डन के पेत्रा और भारत के एलोरा ऐतिहासिक स्थलों के पुनरुद्धार से संबंधित 5 समझौतों को अंतिम रूप दिया गया। दोनों नेताओं ने विश्वास व्यक्त किया कि ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करेंगे और क्षेत्र में शांति, समृद्धि तथा स्थिरता में योगदान देंगे। जॉर्डन से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के बोंडाई बीच पर हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि भारत और इजराइल आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ है। विदेश मंत्री ने आज यरूशलेम में इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार के साथ बातचीत में ये बात कही। श्री जयशंकर इजरायली विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय परामर्श के लिए आज इजराइल पहुंचे थे। इजराइल को भरोसेमंद साझेदार बताते हुए श्री जयशंकर ने कहा कि पिछले दशक में दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हुई है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के कार्यान्वयन तथा अल्प विकसित और विकासशील देशों के लिए काम करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। ये बयान विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयन की मुलाकात के दौरान दिया गया। दोनों नेताओं ने कल अबूधाबी में 16वीं भारत यूएई संयुक्त आयोग की बैठक और भारत यूएई रणनीतिक वार्ता के पांचवें दौर की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि बैठकों ने द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण दायरे की व्यापक समीक्षा करने का अवसर प्रदान किया। इनमें व्यापार, निवेश, ऊर्जा, संपर्क, रक्षा, सुरक्षा, विकास साझेदारी, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, संस्कृति, शिक्षा और जन जन संबंधों जैसे मुद्दे शामिल थे। दोनों नेताओं ने भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी की गहराई और व्यापकता पर संतोष व्यक्त किया। मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। विश्व के 35 देशों ने रूसी हमले से यूक्रेन को हुए नुकसान की भरपाई के लिए क्षतिपूर्ति कोष गठित करने की योजना को आज औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी। एक रिपोर्ट।
मानवाधिकार संगठन काउंसिल ऑफ यूरोप ने अंतर्राष्ट्रीय दावा आयोग का गठन किया है। इसके माध्यम से फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से यूक्रेन के निवासियों को किसी भी क्षति के लिए सहायता दी जाएगी। मीडिया की खबरों में कहा गया है कि काउंसिल ऑफ यूरोप इस बात को लेकर दृढ़ है कि रूस को इस भरपाई का खर्च वहन करना चाहिए, लेकिन उसे इसके लिए बाध्य करने का कोई स्पष्ट तरीका उपलब्ध नहीं है। यूरोप में फ्रीज की गई रूसी परिसंपत्ति का उपयोग इस उद्देश्य के लिए किए जाने का प्रस्ताव है। आज हेग में नीदरलैंड्स की संसद को संबोधित करते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिलने की आशा व्यक्त की है। कल श्री जेलेंस्की बर्लिन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के साथ शांति वार्ता में शामिल हुए। विश्व दर्पण के लिए शक्ति सिंह।
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस के साथ जारी युद्ध समाप्त करने के लिए शांति समझौते को कुछ ही दिनों में अंतिम रूप दिया जा सकता है। संवाददाताओं से बातचीत में राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि अमरीकी दूत अगले सप्ताह के अंत तक अमरीका में संभावित बैठकों से पहले प्रस्तावों को अंतिम रूप देंगे, फिर इन्हें रूस को पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि अमरीका के साथ चर्चा की गई शांति योजना का मसौदा बहुत व्यावहारिक है, हालांकि कुछ प्रमुख मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं। अमरीकी अधिकारियों ने कहा है कि अमरीका द्वारा तैयार की गई शांति योजना के लगभग 90% भाग पर यूक्रेन और यूरोप की सहमति है। ईरान और पाकिस्तान से 3,000 से अधिक अफगानी शरणार्थियों को एक ही दिन में जबरन निर्वासित किया गया। तालिबान के उपप्रवक्ता मुल्ला हमदुल्ला फितरत ने सोशल मीडिया पर प्रवासियों के मुद्दे से संबंधित रिपोर्ट उच्चायोग से साझा करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 577 परिवारों के 3,005 लोग कल अफगानिस्तान वापस लौटे। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट में भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारत ने आज अंतिम लीग मुकाबले में मलेशिया को 315 रन से हराया। भारतीय टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 408 रन बनाए। जवाब में मलेशिया की टीम 33वें ओवर में सिर्फ 93 रन पर ही सिमट गई। अभिज्ञान कुंडू को 209 रन की शतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अदीस अबाबा में इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉ अबी अहमद अली के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों ने आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री की 2 दिन की जॉर्डन की सफल यात्रा संपन्न। दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने यरूशलेम में इसराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति दोहराई। और दुबई में भारत अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट में मलेशिया को 315 रन से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।